अक्षरा गोयनका पिछले कई महीनों से आहान के फार्म हाउस पर बंद थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी जिसके गायब होने के बाद किसी को कोई फर्क ना पड़े। अक्षरा गोयनका मुंबई के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन मिस्टर देवांश गोयनका की बेटी थी। अक्षरा और आहान की शादी किसी बिजनेस डील के चलते हो रही थी, इस वजह से उस शादी में देवांश और विजय की सहमति ज्यादा थी। शादी फिक्स होने के बाद अक्षरा भी कहीं ना कहीं आहान को चाहने लगी थी, लेकिन आहान किसी ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था जिसे विजय ने उसके लिए सिलेक्ट किया हो। शादी के दिन ही आहान ने अक्षरा को किडनैप कर लिया था और बाहर ये खबर फैला दी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ छोड़कर चली गई है, जिसके बाद अक्षरा को किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। आज इतने महीनों बाद जब अक्षरा ने आहान और चाहत की सगाई की न्यूज़ सुनी तो वो बुरी तरह तिलमिला गई। उसे किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना था। अक्षरा ने अपने कमरे के रोशनदान से देखा तो उसे विजय दिखाई दिया। विजय भी अंदर जाने की फिराक में था। विजय को देखकर अक्षरा के चेहरे पर चमक आ गई। मिस्टर ओबेरॉय यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। ज़रूर ये अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे आए होंगे। अगर ये दामिनी तक पहुँच गए तो मुझे कभी यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। मुझे कुछ भी करके इन्हें खुद को यहाँ से निकलने के लिए मनाना होगा, अक्षरा ने मन ही मन कहा। उसने रोशनदान से अपना एक इयररिंग फेंका। वैसे भी उसने अभी तक शादी का जोड़ा और ज्वेलरी पहन रखी थी। हालांकि उसमें काफ़ी बदबू आ रही थी और वो बुरी तरह मैला भी हो चुका था, पर अक्षरा को खुद को पागल प्रूफ करने के लिए ये सब करना पड़ रहा था। उधर खिड़की की तरफ ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से विजय वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था और वहीं पर खड़ा था। अंदर सब लोग पार्टी कर रहे थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए अक्षरा ने अपने इयररिंग के बाद अपना नेकलेस फेंका तो विजय का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसने ऊपर की तरफ देखा तो अक्षरा ने अपना हाथ हिलाया। अक्षरा को अपने सामने देखकर एक पल के लिए विजय को यकीन नहीं हुआ। वो जहाँ थी वो अंडरग्राउंड एरिया था, तो उसकी खिड़की बाहर की तरह नीचे की तरफ थी। विजय से नीचे झुका और अक्षरा को देखकर हैरान रह गया। वो बोला, तुम तो अक्षरा गोयनका हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही सब कुछ गड़बड़ हो गई और मेरा बिजनेस नीचे आ गया। क्या ज़रूरत थी शादी से इस तरह भागने की? अक्षरा को वहां देखते ही विजय गुस्सा हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। अक्षरा की ये हालत देखते हुए विजय को समझते देर नहीं लगी कि अक्षरा के साथ क्या हुआ होगा। विजय ने अक्षरा के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से कहा, अच्छा तो उसने तुम्हारे साथ भी खेल खेला है। आप अपने बेटे को मुझसे बेहतर जानते हो। आपको पता है वो किसी और से शादी करने जा रहा है। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं आहान को किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती, अक्षरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, आखिर उसे बाहर जो निकलना था। विजय ने कुछ पल के लिए उसकी बातों पर गौर किया। उसे आहान की शादी के बारे में कोई खबर नहीं थी। फिर उसने अक्षरा से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और भी है? एक औरत जो प्रेग्नेंट है? मैं औरत क्यों बोल रहा हूँ, तुम तो दामिनी को जानती होगी, वो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। क्या दामिनी को भी यहीं पर रखा है उसने? विजय को सबसे पहले दामिनी की फिक्र थी, इसलिए उसने उसी के बारे में पूछा। अक्षरा ने तुरंत ही नामे सिर हिलाकर कहा, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है अंकल, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। वो तो मैं निकाल ही लूँगा, आखिर तुम्हारे जरिए मैं उस आहान की सच्चाई सबके सामने ला सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, विजय ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। उसकी हालत भी नहीं थी कि वो अक्षरा गोयनका जैसी लड़की की मदद ना करे। अक्षरा ने भी तुरंत हाँ कह दी थी, आखिर उसके पास विजय के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अक्षरा ने जवाब में कहा, आप बस मेरी यहाँ से निकलने में मदद कीजिए। आई प्रॉमिस मैं वो सब करूँगी जो आप चाहते हैं। सबसे पहले मुझे आहान की शादी रोकनी है। वो मुझे धोखा देकर किसी और से शादी नहीं कर सकता। उसे पूरी दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी कबूल करना होगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो या नहीं। मुझे बस मेरी दामिनी वापस चाहिए। आहान से शादी होते ही तुम मेरी दामिनी को ढूंढने में मदद करोगी। सिर्फ वही मेरी दामिनी का पता जानता है, विजय ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। अक्षरा ने उसकी सारी शर्तों को मान लिया था। उसके बाद विजय वहां से वापस चला गया, क्योंकि वो ज्यादा देर तक वहां रुकने का रिस्क नहीं ले सकता था। दूसरा, उसे अक्षरा को भी वहां से बाहर निकालना था। विजय के जाते ही अक्षरा ने राहत की सांस ली। तुम्हारी खुशी और गम दोनों मुझसे जुड़ा हुआ है आहान ओबेरॉय, वापस तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। जिससे तुम शादी कर रहे हो उसे भगाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। तुमसे शादी कर रही है तो जरूर तुम्हारे असली चेहरे से वाकिफ नहीं होगी, पर ये अक्षरा गोयनका उसे सब सच बताएगी। वो खुद इस शादी से बैकआउट करेगी। तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना कि मैं शादी बीच में छोड़कर भाग गई, तो अब किसी और की बारी है बीच में भागने की। अक्षरा ने मन ही मन फैसला लिया कि अब उसे आगे क्या करना है और विजय के अगले स्टेप का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंगेजमेंट पार्टी के बाद पूरी फैमिली ओबेरॉय मेंशन में इकट्ठा थी। आहान तो अपने विला में जाना चाहता था, पर शिवानी ने उसे जाने नहीं दिया।
वो चाहती थी कि शादी तक आहान और चाहत दोनों उसी के घर पर रहें। चाहत की नानी पार्वती भी वहां पर आ गई थी और उसके साथ में श्रद्धा भी थी। पूरी फैमिली रात को आइसक्रीम खाते हुए आगे की प्लानिंग कर रही थी। शिवानी ने आहान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे चक्कर में सब जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अब सगाई तो हो गई, दो दिन बाद में हल्दी और मेहंदी की रस्म है और उसके अगले दिन शादी, फिर उसके तीन दिन बाद में रिसेप्शन पार्टी रख लेंगे। इस तीन दिनों में मैं बची हुई शादी के बाद की रस्में करवा दूंगी। शिवानी ने आहान को सब कुछ बता दिया था। पार्वती जी काफी खुश थी, वो चाहत के पास से बैठी थी। उन्होंने चाहत के बालों पर हाथ रखते हुए कहा, काश आज निशा भी जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती, पर देखो ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी माँ का जिक्र होते ही चाहत की आंखें भी नम हो गई थी। आहान चाहत को उदास नहीं देखना चाहता था। उसने उसकी भीगी पलकें देखी तो गुस्से में उसकी मुट्ठी कस गई। आहान मन ही मन बड़बड़ा कर बोला, मैंने नानी को यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि डॉल लोनली फील ना करे, लेकिन ये तो बार बार निशा आंटी का जिक्र कर रही है। अगर यही चलता रहा तो डॉल रो रोकर अपनी हालत खराब कर लेगी। शिवानी ने पार्वती की बात का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी आंटी जी, यहाँ चाहत को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। आहान बहुत प्यार करता है उसे, ऑलरेडी वो उसके लिए काफी कुछ कर रहा है, तो आगे भी उसे हर तरह से प्यार देगा। आयुष ने मूड लाइट करने के लिए कहा, देखिए भाई, आप लोग इमोशनल होते रहिए, लेकिन मुझे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप लोग जल्दी जल्दी रस्में कर रहे हैं तो आपकी वजह से मेरा एंजॉयमेंट कम हो रहा है। तुम्हें जैसे जो तैयारी करनी है तुम कर सकते हो, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। बस हाँ, ये ख्याल रखना कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आहान ने आयुष की तरफ देखकर कहा। आहान के हाँ कहते ही आयुष काफी खुश हो गया। रात काफी हो गई थी इसलिए निशा ने उनकी बातचीत को वहीं खत्म करते हुए कहा, चलिए बाकी की बातें बाद में होती रहेगी, वैसे भी आगे के कुछ दिन बिजी रहने वाले हैं तो आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी सारे अपने कमरे में पहुंचो और रेस्ट करो।
सबने शिवानी की बात मानी और वहां से खड़े हो गए। आहान चाहत की तरफ बढ़ रहा था तो शिवानी जल्दी से बोली, अब तुम शादी तक चाहत से दूर रहोगे, शादी के बाद साथ ही रहना है, थोड़ी दिन का सब्र कर लो। शिवानी ने चाहत और श्रद्धा का रूम एक साथ में सेट किया था। उसके ऐसा करने पर आयुष आहान को परेशान करते हुए बोला, ये क्या कर दिया मॉम, आपने तो भाई का सारा मजा ही खराब कर दिया। आज तो भाई को पूरी रात भाभी के बिना नींद नहीं आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस डॉल से थोड़ी देर बातें करनी थी, आहान ने आयुष की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, जिसके बाद आयुष ही जल्दी से चुप हो गया। जो भी बातें करनी है वो अब शादी के बाद ही करना, चलो तुम अपने रूम में पहुंचो, शिवानी ने सख्ती से कहा तो मजबूरन आहान को अपने रूम की तरफ जाना ही पड़ा। वो चाहत को जाते हुए देख रहा था। आहान को चाहत के साथ टाइम स्पेंड करना था, उसके लिए वो पूरे दिन से वेट कर रहा था, तो वहीं चाहत ने जाने से पहले आहान की तरफ लाचारी से देखा। वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी और जानती भी थी कि आहान को गुस्सा आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में थे। श्रद्धा और चाहत एक साथ थीं। सोने से पहले श्रद्धा ने कहा, तुमने आहान का लुक देखा जब शिवानी आंटी ने अलग रूम में सोने के लिए कहा था? वैसे काफी पर्सनल सवाल होगा, तुम क्या दोनों एक ही रूम शेयर करते हो? शादी से पहले क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया है? चाहत ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वो इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आहान और उसका रिश्ता किस सिचुएशन में बना था ये सिर्फ वही जानती थी। आज भले ही आहान चाहत से वेहनतहा मोहब्बत करता हो, लेकिन उस वक्त उनका रिश्ता बिल्कुल अलग था। तब आहान को अपना गुस्सा शांत करना होता था, इसके लिए वो चाहत को हर तरीके से यूज करता था। श्रद्धा आगे कुछ बोलते उससे पहले चाहत ने जल्दी से कहा, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वैसे भी आज का दिन काफी बिजी था तो मैं थक गई हूँ। अच्छा बहाना है बेटा टालने का, लेकिन मैं सब कुछ जानकर रहूंगी, श्रद्धा ने मुंह बनाकर कहा और लाइट बंद करके सोने लगी। चाहत का चेहरा दूसरी तरफ था। उसने एक नज़र अपनी रिंग की तरफ देखा जो आज सगाई के दौरान आहान ने उसे पहनाई थी। वो एक डायमंड खूबसूरत रिंग थी। कितना कुछ बदल गया है ना, पहली बार जब आपके करीब आई थी तब मुझे खुद से नफरत हो गई थी, ऐसे लगा जैसे मैंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया हो, लेकिन आज कितना कुछ बदल गया है। रिश्ते की शुरुआत जैसे भी हुई हो, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले हो आहान, सोचते हुए चाहत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। चाहत सोने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया। उसने एक नज़र श्रद्धा की तरफ देखा तो थोड़ी ही देर में काफी गहरी नींद में चली गई थी। इस वक्त कौन आया होगा, चाहत ने हल्की घबराहट के साथ कहा। वैसे भी उसे अलग जगह पर घबराहट होती थी, ऊपर से इतनी रात को किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया था। चाहत की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो खिड़की खोलकर देख सके। वो उस खटखटाहट को इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने फिर से पूरे जोर से खिड़की को खटखटाया, जिससे चाहत पूरी तरह चौंक गई। लगता है खिड़की खोलने के लिए जाना ही होगा, चाहत ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा और खिड़की खोलने के लिए बढ़ गई।